हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दादी, मैं तो कहता हूँ कि हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ये कहकर वो दादी की ओर देखने लगा। वहीं सिद्धार्थ गहरी नज़रों से केवल रणविजय को देखता रहा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसके लिए अगर इस वक्त सबसे ज्यादा कुछ जरूरी था तो सिर्फ और सिर्फ झलक का पता लगाना जरूरी था। अगर झलक जिंदा थी तो कहाँ थी और उसके इस तरीके से आने का क्या मतलब था? तभी दादी ने सिद्धार्थ को देखकर पूछा, क्या बात है सिद्धार्थ, क्या सोच रहे हो तुम, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तब सिद्धार्थ ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं सिर्फ झलक के बारे में पता लगाना चाहता हूँ, आखिरकार वो है कहाँ और उसका इस तरीके से आने का क्या मतलब था? ये सुनकर दादी थोड़ा सा रूठे हुए अंदाज में लेकिन दबे गुस्से के साथ बोली, लेकिन बेटा, क्या जरूरत है तुम्हें उस लड़की के बारे में पता लगाने की? अगर रणविजय कह रहा है तो हो सकता है कि ये बात सच हो। नैना जी के किसी विपक्षी पार्टी वाले ने झलक को मोहरा बनाकर ये काम करवाया हो, उनकी बेटी की शादी तुड़वाने के लिए। हमें भी तो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी बेटा, हम झलक से सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। तुम्हारा उससे तलाक हो चुका है, तुम्हारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। और इतना ही नहीं, शायद तुम भूल रहे हो कि समाज में उसकी कैसी छवि है। वो एक नाजायज से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो अगर वो मिल भी जाती है तब भी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? और फिर हो सकता है कि वो अपने गुस्से और नफरत का बदला लेने के लिए इस तरीके से वहां आई हो। उसने अपने आप को हमारे सामने जानबूझकर पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया हो ताकि हम लोग डर जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिर तुरंत रणविजय को देखकर बोली, तुम एक काम करो, ओबेरॉय परिवार तक खबर भिजवा दो। जैसे ही हम वो नेकलेस जीतेंगे, हम आकांक्षा और सिद्धार्थ की शादी कर देंगे। और इस बार कोई भी इस शादी को रोक नहीं पाएगा, ना किसी के आने से ये शादी रुकेगी। दादी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अब कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। वहीं रणविजय अंदर ही अंदर थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहा था। उसे कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का रास्ता नजर आने लगा था। हालांकि वो भी दिल से झलक को छोड़ना नहीं चाहता था और उसके बारे में पता भी लगाना चाहता था, लेकिन अभी तक कहीं से भी उसे कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। इसलिए उसने भी नैना ओबेरॉय की बात को ही तवज्जो देना जरूरी समझा था कि हो सकता है अगर खुराना परिवार वो नेकलेस जीत लेता है, उसके बाद ही वे लोग सिद्धार्थ और आकांक्षा की शादी करेंगे। ये सोचकर उसके चेहरे पर राहत भरी एक छोटी सी मुस्कान आ गई। तभी नैना बोली, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने हमसे बात नहीं की, वो हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है रणविजय। और आप लोग तो खुद कह रहे थे कि आप लोग अस्पताल तक जा पहुंचे थे, तो क्या हमें शामिल होना नहीं बनता था? ये सुनकर रणविजय कुछ पल के लिए चुप रह गया। तब नैना थोड़ा शांत होकर बोली, लेकिन हमने भी नीलामी में भाग लेने का फैसला किया है। ये सुनकर रणविजय ने दांत भींच लिए लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, आपको क्या जरूरत है उसमें अलग से नाम लेने की? और वैसे भी अगर खुराना परिवार वो नेकलेस जीत जाता है तो आएगा तो वो फिर भी आपकी बेटी के गले में ही ना। इससे अच्छा है कि आप लोग अलग अलग भाग लेने के बजाय एक साथ भाग लें। और हाँ, हो सके तो आकांक्षा को सिद्धार्थ के साथ ऑक्शन में भेज दीजिएगा ताकि लोगों के मन में जो थोड़ी बहुत मनमुटाव और गलत फहमियां पैदा हुई हैं वो भी खत्म हो जाएं। आकांक्षा ने भी तुरंत हामी भरते हुए कहा कि वो सिद्धार्थ के साथ ऑक्शन में जरूर जाएगी। वहीं दूसरी ओर झलक जल्दी ही आदित्य के साथ वहां से चली गई थी। वहां पर कबीर मुंह लटकाए हुए खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर आदित्य पर पड़ी और उसने देखा कि झलक उसके साथ आई है तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो तुरंत आदित्य का बाजू खींचकर उसे साइड में ले गया और गुस्से में फुसफुसाते हुए बोला, क्या कर रहा है तू? इस लड़की ने तेरी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और तू हाथ में हाथ डालकर इसी के साथ घूम रहा है। आदित्य ने झुंझला कर कहा, शट अप, फालतू बकवास बंद कर। लेकिन तभी उसने देखा कि झलक सीधा अंदर चली गई है। वहां पर दिग्विजय सिंह और बलवीर जी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही अनामिका की नजर झलक पर पड़ी वो चौंक गई और तुरंत उसके पास आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम भी दादाजी को देखने के लिए आई हो? झलक के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने हल्के स्वर में कहा, जी हाँ। तभी बलवीर जी की नजर झलक पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास आए और भावुक होकर बोले, बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम मुझे इतनी प्यारी लगी थी कि मेरा दिल चाहता था काश तुम मेरे घर की बहू बनकर आ जाओ तो शायद मेरे बेटे को भी थोड़ी समझ आ जाती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी वो जल्दबाजी तुम्हें इस कदर बुरी लग जाएगी। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, प्लीज। ये सुनकर झलक ने तुरंत उनके जुड़े हुए हाथों को पकड़ लिया और भावुक होकर बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? आप तो मेरे दादाजी जैसे हैं और आई एम सॉरी, मैंने भी शायद थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया था। मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर बलवीर जी मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा कोई बात नहीं, तबीयत तो खराब होती रहती है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और आज के बाद तुम मुझे अंकल नहीं बुलाओगी। जिस तरह मैं आदित्य का दादा हूँ, उसी तरह तुम्हारा भी दादा हूँ, ठीक है? ये सुनकर झलक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं दिग्विजय जी गहरी नजरों से ये सब देख रहे थे। उन्हें साफ समझ आ गया था कि इस वक्त कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। तभी बलवीर जी ने कहा, काफी देर हो गई है, हमें अब घर चलना चाहिए, तुम्हारी दादी हमारा इंतजार कर रही होंगी। ये सुनकर अनामिका भी उठ खड़ी हुई और बोली, जी चलिए। वे दोनों बाहर जाने ही थे कि बलवीर दादाजी ने झलक को रोकते हुए कहा, अरे बेटा अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो ये हमारा तो डिस्चार्ज हो गया है, क्यों ना हम साथ ही निकले, तब तक हमें अपनी बेटी के साथ थोड़ा और वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। दादाजी की ये बात सुनकर झलक थोड़ा सा चौंकी, लेकिन अगले ही पल मुस्कुराते हुए उनके पास गई और उन्हें सहारा देकर बाहर ले जाने लगी। उसी समय आदित्य, जो कबीर को डांटते हुए अंदर आ रहा था ताकि दादाजी को डिस्चार्ज करवा सके, ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। दादाजी झलक के साथ हंसते हुए बाहर आ रहे थे। कबीर भी उलझन में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, जिसकी वजह से दादाजी अस्पताल पहुंचे थे उसी के साथ अब हंसते मुस्कुराते बाहर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? फिलहाल झलक ने दादाजी को बड़े ही आराम से सहारा दिया। दूसरी तरफ से आदित्य ने भी उन्हें संभाला और गाड़ी में बैठा दिया। इसके बाद झलक ने दादाजी से कहा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। उधर दिग्विजय जी ने भी बलवीर जी को इशारों में कुछ कहा और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। वहीं अनामिका ने जाते जाते कबीर की तरफ देखा। कबीर अभी भी उसके पहले वाले व्यवहार को याद कर रहा था। तभी अचानक अनामिका ने उसे देखकर आंख मार दी। कबीर थक्का सा रह गया। वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तब तक अनामिका अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी। कबीर गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, कैसी अजीब और खतरनाक लड़की है ये, एक ही पल में मेरे होश उड़ा देती है और ऊपर से आंख मारती है। ऐसी बदतमीज लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ये सोचकर वो भी वहां से चला गया। जल्द ही गाड़ी मल्होत्रा मेंशन की ओर रवाना हो चुकी थी।
रास्ते में झलक ने दादाजी की ओर गहरी नजर से देखते हुए कहा, दादाजी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है, सारी मीटिंग्स में ऑनलाइन हैंडल कर लूंगी, लेकिन अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे पहले मुंबई जाना होगा, वहां जाकर ऑक्शन में भी शामिल होना है, और साथ ही सालों पहले ओबेरॉय परिवार ने पिताजी को मजबूर करके जो जमीन हड़पी थी वो जमीन भी मुझे उनसे वापस लेनी है। ये सुनकर दादाजी पूरी तरह हैरानी से उसे देखने लगे और बोले, कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुम भले ही कुछ देर के लिए वहां गई थी, लेकिन तुम जानती हो ना तुम्हारे वहां जाने का क्या मतलब है, वहां क्या हुआ है, सब लोग तुम्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह अकेले कहीं नहीं जाने दे सकता। तभी अनामिका तुरंत बोली, आप परेशान क्यों होते हैं, मैं हूं ना झलक के साथ, मैं भी उसके साथ जाऊंगी, और आप देखना इस बार हम जीत कर ही लौटेंगे और अपने दुश्मनों को सजा जरूर देंगे, क्योंकि मुझे अब ये बात समझ में आ चुकी है कि जब तक हमारे दुश्मन सही सलामत हमारे आसपास रहेंगे हम कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनामिका की बात सुनकर झलक उसकी ओर देखने लगी। वो उसके शब्दों का मतलब समझ गई थी। झलक शांत लेकिन ठोस आवाज में बोली, अनामिका यहाँ बात आगे बढ़ने या पीछे हटने की नहीं है, वैसे भी अपने दुश्मनों को मैं एक दिन में खत्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें मारना नहीं चाहती, मैं उन्हें तड़पाना चाहती हूँ। उन्हें हराने के बाद, उन्हें सजा देने के बाद भी मेरी जिंदगी में किसी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मैंने ठान लिया है मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर गुजारूंगी। झलक की ये बात सुनकर अनामिका कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी और सोच का मिला जुला भाव साफ दिखाई दे रहा था।